आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्। लक्ष्मीनिवासनिलयम् विलीनविलयम् निधाय रतिवीरम् आत्मानुशासनमहम् वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य देव ने यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ लिखा है, उस पर शुल्लक मनोहर जी वर्णी जो सहजानंद जी महाराज है उन्होंने प्रवचन किए हैं। यह आत्मानुशासन प्रवचन पुस्तक के पृष्ठ संख्या 94 पर हम आ गए। और अभी हम 20 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, लेक्चर भी 20 नंबर का। धर्मसुखस्य हेतुर्न विराधकस्व कार्यस्य तस्मात् सुमिङ्गभिया मा भूर्धर्मस्य निमुखस्त्वम्। सुख की हेतुता वो अविराधकता, विराधना करना है ने उसको, जैसे विराधना करने ने उसका नाश करना था, जैसे सम्यक की विराधना करता था उसकी नाश। धर्म सुख का ही कारण होता है, वह कभी भी अपने कार्य का विरोधी नहीं होता। कार्य क्या है धर्म का? सुख। तो धर्म अपने कार्य का विरोधी नहीं होता, यानी अपने सुख उत्पन्न करने के रूपी जो कार्य है उसका वो कभी भी विरोधी नहीं होता, यानी धर्म से कभी दुख उत्पन्न नहीं होता। धर्म से सुख न उत्पन्न हो ये बात कभी नहीं बनती, अपने कार्य का विरोधी नहीं है, ये उसका अर्थ है। इस कारण है सुखार्थी पुरुषों सुख के भंग होने के भय से धर्म से विमुख मत हो। लोग क्या सोचते रहे धर्म यानी वो बहुत कठिन बात है, ये अपने से नहीं होगा, तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो कहते हैं सुख के भंग होने के भय से, अरे हमारा सुख चला जाएगा ऐसा भय है जीवों को। जो सुख है ही नहीं है उसको सुख मान मान कर और वो नष्ट होने का भय है इसको, तो वो धर्म से विमुख मत हो। लोगों को दिखने में भी सहसा ऐसा लगता है कि धर्म में तो कष्ट करना पड़ता है। मुनि जीवन देखते हैं और बेचारे हम तो इतना अच्छा रह रहे, तो वो कैसे बिचारे, उनको बिचारे कहते हैं, तो वो बिचारे नहीं, वो तो अतीन्द्रिय आनंद में झूलने वाले हैं। बिचारे तो हम हैं, कषाय की अग्नि में जल रहे हैं, रात दिन क्या हो रहा है, वही तो हो रहा है। व्यवहार धर्म में पूजन जाप चाहे कठिन ठंड भी हो तो नहाना, उपवास करना, एकाशन करना, पानी पीने का मर्यादा रखना आदि, ये तो बहुत कठिन काम है। क्या सोचता है वो, इसको बहुत कठिन समझता है इनसे, क्योंकि इसी में धर्म मान लिया। ये बाह्य में होते हैं ऐसे, परंतु जिसने सच्चा निश्चय धर्म प्रकट किया है वो तो सहज होते उसके, उसमें कोई, क्योंकि उसमें तो कठिनाई तो होती ही नहीं उसके, क्योंकि ये शरीर रूप अपने को माना ही नहीं उसने, उसको ऐसा लगता है बहुत कठिन काम है। इनसे तो उसी समय सुख में फर्क आ जाता है, फिर तो धर्म से हम आगे के समय के लिए क्या आशा करें। क्या कहते हैं, बाद में सुख होगा वो क्या, अभी अभी तो दुख हो रहा है, उपवास करने से कितनी तकलीफ होती है ना। इस प्रकार आशंका करते हुए जो लोग धर्म से दूर रहते हैं उनको समझाने के लिए आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि तुम डरो मत, धर्म से विमुख मत हो। धर्म नियम से सुख का कारण होता है। धर्म स्वभाव से ही आनंद उत्पन्न करता है, यह अपने कार्य का कभी विरोधी नहीं हो सकता। अपना कार्य क्या है? सुख उत्पन्न करना, उसका वो कभी विरोधी हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं नियम से सुख का कारण है। कार्य कारण में विरोधकता का अभाव। भैया जिस कार्य का जो कारण है वह उस कार्य का विरोधी नहीं होता, पहली तो बात यह है। यानी जिससे जो कार्य उत्पन्न होता है उसका उसी का विरोधी कैसा होगा? दूसरी बात यह जानो कि धर्म का तो आनंद उत्पन्न करने का स्वभाव ही है। कोई भी स्वभाव धर्म स्वभाव का नाश नहीं करता है। इससे समझो कि धर्म नियम से आनंद ही उत्पन्न करेगा। स्वभाव तो उसी को कहते हैं कि जिसका नाश नहीं होता। जो लोग धर्म का नाम लगाते हैं कि इससे कष्ट है, अथवा जहाँ धर्म ज़्यादा होता है वहाँ दुख ही है, और धर्म के नाम पर किन्हीं किन्हीं माने गए क्षेत्रों पर बड़ा अन्याय भी होता है, इस कारण धर्म तो क्लेश का ही कारण है और यह पाप रूप है, ऐसे लोगों की मान्यता कहते हैं लोग। क्योंकि जिसको उसमें रुचि नहीं है वो कहते भी है तुम इतना करके क्या है, इससे तो हम अच्छे हैं, और इसी को क्लेश का ही कारण मान लेते हैं। लेकिन यह समझना चाहिए धर्म की ओट लेकर जो पाप किए जाते हैं वे पाप पाप रूप होने से क्लेश रूप है। ये धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है तो कहते उससे क्लेश हो रहा है। धर्म स्वयं पाप रूप नहीं है। पाप वृत्ति ऐसी कलुषित और चालाक वृत्ति है कि यह अपने अवगुण नहीं प्रकट कराने देती, और धर्म का बाना रखकर यह पाप इस लोक में नृत्य करता है। लेकिन जिस जिस समय आपको क्लेश हुआ हो समझना चाहिए कि कोई पाप की बात आई है। पाप की बात आए बिना क्लेश नहीं हो सकता। क्लेश का कारण पाप भाव, पेज नंबर 95। जैसे कोई पुरुष इष्ट वियोग में दुखी है, पुत्र गुजर गया अथवा इष्ट मित्र स्त्री आदि गुजर गए तो उसका बड़ा खेद करता है। खेद पाप किए बिना नहीं होता। आप अपने निर्णय में यह रख लो कि मनुष्य जो पर के प्रति मोह भाव कर रहे हैं वह पाप है, वो पाप लगता ही नहीं इसको, और पाप परिणाम में दुखी होना प्राकृतिक बात है, प्राकृतिक नैसर्गिक है। कोई सी भी दुख की घटना हो समझना चाहिए कि हम कोई पाप कर रहे हैं। यानी दुख लग रहा है क्योंकि हमारा मोह वहां पड़ा। पाप कर्म की बात नहीं कह रहे, जो अष्टकर्म में पाप प्रकृतियां आई है वे तो निमित्त रूप बंधन है, किंतु कुछ खोटा परिणाम किया, कुछ मोह रूप कषाय रूप विषय वांछा रूप अशुभ भाव होते हैं उनकी बात कही जा रही है, उसको पाप परिणाम का। ये तो पाप बंध प्रकृति की बात यहाँ नहीं बता रहे हैं। तो जितने भी क्लेश होते हैं वे पाप भाव से होते हैं। ये कहते हैं रागादि प्रकट ये दुख दे, जिस समय कर रहा है उसी समय वो दुख देने वाले। दुख देने वाले अभी क्या बताए, दुख किससे होता है तो पापों से होता है। यानी मोह राग द्वेष के परिणाम इटसेल्फ पाप है, और वही राग इटसेल्फ पाप है, वही कह रहे हैं। बाद में पाप आएगा, वो पाप बंधेगा कर्मों में, वो बात अलग। वही अभी फिर से ये वाक्य पढ़ेंगे, देखो नीचे से चौथी लाइन में क्या लिखा, पाप कर्म की बात नहीं कह रहे हैं। जो अष्टकर्म ने आठ कर्मों में पाप प्रकृतियां आई है वे तो निमित्त रूप बंधन है। किससे, किस निमित्त से बंधे? राग के निमित्त से बंधे है। यहाँ जीव ने खोटे परिणाम किए वो पाप प्रकृतियां बंधी, उसकी बात नहीं हो रही है। किंतु कुछ खोटा परिणाम किया, कुछ मोह रूप कषाय रूप विषय वांछा रूप अशुभ भाव होते हैं उनकी बात हो रही है। वो करते हुए उनसे क्लेश है, जीव को क्लेश जो हो रहा है वो कषायों का हो रहा है। अभी बहुत गर्मी हो रही इसलिए तकलीफ हो रही है। ये अभी यही तो कह रहे, जो जो दुख रहे हैं तो सोचो दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको राग है, मैं शरीर हूँ और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं ये मोह मिथ्यात्व है, वो सबसे बड़ा पाप है, इसलिए दुखी हो रहे हैं। मुनि तो ऐसे धूप में जाके वो पर्वत के ऊपर टोंक पर जाके खड़े हो जाते हैं। ख्याल में आती है बात, ये क्या कहना चाहते हैं? अपने जो परिणाम हो रहे हैं ना, मोह के, राग के, द्वेष के, ये इटसेल्फ पाप है, और जब तक वो हो रहे तब तक जीव दुखी ही हो रहा है, उनके कारण दुखी है, संयोगों के कारण कोई दुखी नहीं होता। अपने राग से ही वो तो सुख भी अपने राग से ही मांग रहा है। गुरुदेव ने कितने बार कहा, वो राग का स्वाद आता है, राग का वेदन कर रहा है, पर पदार्थ को कोई वेदन करता ही नहीं है, और उसमें सुख मान रहा है। कोई चीज अच्छी लगती है इसने मान ली है कल्पना में, उसने तो केवल जानने का काम कर रहे किया था कि इस चीज का ये रस है, खट्टा मीठा जो कुछ है, तो अच्छा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, खाता है, अच्छा लगता है, खाता है, भूखने के परिणाम हो रहे हैं। क्यों? उसको अच्छा माना इस जीव ने, उससे मैं सुखी हो रहा हूँ माना उसने, उसमें उसको राग है, रुचि है, और उसका उसे दुख हो रहा है। आप कहें दुख कहाँ हो रहा है, वो तो खा रहा है ना आनंद से, वो दुखी हो रहा है, वो राग है, वो दुख है। यहाँ लिखा जितने भी क्लेश होते हुए पाप भाव से होते, कौन सा पाप भाव? मोह, राग, द्वेष। यह एक निर्णित तत्व है, निश्चित है, ये बहिर्मुखता में क्लेश हेतुता। 95 पेज नंबर। कभी ऐसी भी परिस्थिति आए कि आप बड़े सदाचार से रह रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी कोई दुश्मन बनकर व्यर्थ ही सताए, तो उस समय आप यह पूछ सकते हैं कि हम तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। अरे पाप नहीं कर रहे हो तो दुखी क्यों हो रहे हो? दुख तो पाप परिणाम से ही होता है। दुखी हो रहे इसका मतलब आप पाप कर रहे हैं, समझना। अपने आप पाप कर रहे हैं, उदय की बात वो उन्होंने छोड़ दी, वो तो निमित्त रूप बंधन है। अभी मिथ्या तो है कि नहीं, दुख क्यों हो रहा है? मैंने जिसको अपना माना वो तो खोटा निकला, ये दुख है। तो ये अपना माना, ये पाप किया कि नहीं, और राग भी किया, और सामने से अपेक्षा भी है कि ये ऐसा बिहेव करे तो मैं सुखी हूँ। अब वो तो अपने से चाल से चलता है ना, परिणमता है, अपने चाल से चलने का अर्थ है, तो अपने यथायोग्य परिणमन हो रहा है, और ये दुखी हो रहा है यहाँ। ये भूल किसकी है? सामने वाले की ना। अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि छोड़कर किसी भी अन्य कुतत्व में लगे तो वे सब पाप भाव है। ये मैं आत्म तत्व तो वहां अनादि से मैं स्वयं आत्म तत्व हूं, परंतु कभी उसके तरफ देखा नहीं है, ये कितना बड़ा पाप किया है, और दुखी हो रहा है, स्वयं दुखी हो रहा है। कल बातें हैं आजादी से दुखी हो रहा है, स्वतंत्रता से गुलाम है, आजादी से गुलामी कर रहा है। पाप आए बिना क्लेश नहीं होता है, और प्रकट रूप से तो रोज रोज अनुभव कर सकते हैं, रोज रोज। अरे प्लास पाप इटसेल्फ वही क्लेश है, यही पाप है, वही क्लेश है, उसी समय क्लेश हो रहा है। मैंने माना ये घर मेरा है, ये इटसेल्फ मिथ्या तो है, वो मान्यता के साथ वो दुख चालू है। मेरा है तो उसको कैसा ठीक ठाक रखे, कैसा ठीक है, कोई उसमें नुकसान नहीं करे कोई, हाँ वो जो सब नहीं लगता ना। आप अरीसा देखते हो क्या, मुख देखते हो, मैं मान कर जाते हो वहाँ देखने को, ये पाप कर रहे हैं कहते, हम सभी उठते भगवान का नाम लेते हैं, वो फिर आरसे के सामने क्यों जाते हैं, दर्पण के सामने भगवान का नाम ले, वो तो जाके देखना चाहिए, ये मैं नहीं हूँ ऐसा सोचो तो सही वहाँ पर। उसके पीछे देखने वाला मैं हूँ, तो अरूपी हूँ। व्याख्यान में है ना बात, वहां तो ऐसा होना चाहिए सामने जो दिख रहा है वो आरसे की उसकी अवस्था है, हमने तो ये मैं हुआ मानकर उसको देखते हैं, अरे वो उसकी अवस्था है, दर्पण की अवस्था है, उसका वो रिफ्लेक्शन उसका स्वभाव है और उसको देख देख कर खुश हो रहे हैं, क्या मानकर कि ये मैं हूं। यानी कि पाप आए बिना क्लेश नहीं होता है और प्रकट रूप से तो रोज रोज अनुभव कर सकते हैं, किसी के प्रति द्वेष जगे तो क्लेश होगा। अभी आपने जो कहा दर्पण में देख देख कर भी दुखी होते हैं, अरे अभी वो बुढ़ापा दिखने लगा किसका मुंह और किसकी उद्गल को देख देख कर ये मैं हूं मानकर दुखी होता है, ये दुख अपने गले लगाया सारा। तो किसी के प्रति द्वेष जगे तो क्लेश होता है, देखो किसी के प्रति गुस्सा भी आता है तो पहले यहां जलन होती है तभी गुस्सा निकलेगा ना, होता है कि नहीं, अपनी शांति भंग हो रही कि नहीं है तो क्लेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जलन यानी ऐसी जलन, वो आप जलन ऐसा मत सोचो, उसका जलन यानी जीव की शांति भंग हो गई ना, वही तो जलन है उसके, क्रोध रूपी जलन मैं कह रही हूँ। कोई भी हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, उसकी शांति तो नहीं रही ना उसकी। कोई किसी लोभ है, तृष्णा है, तो वो उसके प्राप्त करने का भी कैसा करूँ, क्या करूँ, उसके लिए क्या मायाचार करूँ, कैसे क्या करूँ, आकुलता कितनी होती है। तो किसी के प्रति द्वेष जगे तो क्लेश होगा, किसी का अनिष्ट चिंतन करे तो क्लेश होगा, किसी भी प्रकार के पाप की बात का विचार करे तो अपने आप में क्लेश बहुत होगा। कोई हिंसा झूठ चोरी कुशील जो कुछ है तो पहले अपने में ही क्लेश हो रहा है। पाप भाव का स्वभाव ही है क्लेश देते रहना, और धर्म भाव का स्वभाव है आनंद देते रहना। वो अपने पास है पूरा पड़ा, परंतु इस जीव को फुर्सत नहीं उसको देखना, कषायों से फुर्सत नहीं है। धर्म नाम है राग द्वेष मोह विषय कषाय के परिणाम न करना, केवल जानन देखनहार रहना। बाह्य धर्म वृत्तियों के बावजूद भी अंतः अधर्म होने पर अशांति, क्या कहते हैं, बाहर में तो सब क्रियाएं कर रहा है धर्म की, जिसको कह रहे हैं पूजन चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है, और अंतर में अंतर क्या हो रहे हैं, अधर्म। कोई लोग ऐसा सोचने लगे कि भाई दशलाक्षणी के दिनों में और विशेषकर अनंत चतुर्दशी के दिन लोग पूजा करते हो, किसी को अच्छा स्थान नहीं मिला अथवा हिसाब किताब पेश करते समय बड़े झगड़े मच जाते, सब जगह है, सबको मालूम है, साल भर का हिसाब किताब चलता है, कौन उनके जो कुछ पदाधिकारी हो गए तो बहुत चलती है वो, बाहर नहीं झगड़ा करेगा इतना वहां झगड़ा करता है। पूजा में भी पहले यह पूजा न करो, अब यह पूजा करो, इस प्रकार की कलह लोग करने लगते हैं। पहले क्या कहना चाहिए, पहले किसकी, वो देव की कि गुरु की, फिर वो सरस्वती की, फिर कौन सा करना, सहस्र नाम पहले किसे बोलना, भक्ता मेरे का अर्घ देना कि नहीं देना, अभी इस पर बात झगड़ा चलेगा। बहुत बड़े विवाद की चीज लोग बना लेते हैं, अब खड़े होकर करना कि बैठ के करना, वो क्यों बैठ गई, अरे उसको तकलीफ है, पैर में कुछ हो रहा है, वो नहीं, वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। तो पद पद पर धर्म कार्यों में भी बड़े बड़े कलह और क्लेश होते हैं, तो धर्म तो सुख का कारण नहीं हुआ, अरे वहां वह धर्म नहीं कर रहा है, जो भी कलह हो रहे हैं, यानी धर्म के नाम पर भी जो हो रहे ना, जो भी कलह हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, वे सब पाप भावों से हो रहे हैं, धर्म से नहीं हो रहे। धर्म नाम आत्म स्वभाव का है, राग द्वेष न करके, यानी मंदिर में जो झगड़े हो रहे हैं, अरे तुम भगवान को कहाँ देख रहे हो, वो आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, वो क्या कर रहा है, झगड़े क्यों हो रहे हैं, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा, वहां जाएंगे नहीं क्यों, वहां सब राग भाव चलता है। अरे पर जो वितराग तो को नहीं देख रहा है, रागी उनको देख रहा है, तो तुझे रागी दिखेगा ना, वहां सामने भगवान मौजूद है ना वितरागी, उनकी ओर देखो ना, दूसरा मुझे क्या कहता है, मेरा अपमान करता है, मुझे ऐसा बोलता है, वो उसको क्यों देख रहा है? भगवान को देख, अपने को देख, दो ही बातें करनी है मंदिर में। धर्म नाम आत्म स्वभाव का है। राग द्वेष न करके शुद्ध जानन देखना रहना, इसका नाम धर्म है। कोई यह धर्म करके तो देख ले, क्लेश धर्म से नहीं होता, क्लेश पाप परिणाम से होता है। धर्म की ओट में पाप का नग्न नृत्य। एक किसान था, उसके थे 3 बैल, 2 बैल तो खेत पर ले जाए और 1 बैल को आंगन में बांध जाए। उसी आंगन में बंधे बैल के पास एक अलमारी थी। किसान अलमारी में दाल रोटी चावल रखकर खेतों में काम करने चला जाता था। वहाँ कोई बंदर आकर अलमारी खोलकर रोज रोज सारी दाल रोटी चावल खा जाए और जो कुछ बचे उसे बैल के मुख में पोत जाए। किसान आए और मुख में लगा हुआ देखे तो उसे खूब पीटे। 10-12 दिन बाद एक पड़ोसी ने समझाया, इस बैल को न मारो, यह दाल रोटी नहीं खा जाता है, कोई और कुछ बात है। एक दिन छिपकर देखो कौन खा जाता है। उसने छिपकर देखा तो बंदर को सारी क्रियाएं करते हुए पाया। आया, अलमारी खोली, दाल रोटी चावल सब कुछ खाया और जो कुछ बच गया उसे बैल के मुख में पोतने लगा। उसी समय उस किसान ने आकर बंदर को पीटा। कुछ भी हुआ हो, पर जैसे वह बंदर इतना चालाक था कि उपद्रव तो करे खुद और बैल के मुख में दाल चावल पोतकर नाम लगावे बैल का। ऐसे ही जानो कि ये पाप, अपमान, बदनामी, अप्रभावना आदि सभी पाप के काम करके धर्म के मुंह पर अबजस लपेट कर उद्दंडता करते हैं, यानी स्वयं करते खोटे परिणाम और ये धर्म के नाम पर कर दे। नाम बदनाम होता है धर्म का, पर धर्म कभी बुरा नहीं होता है, बुरा तो यह पाप ही है। ज्ञातृत्व धर्म में क्लेश का अभाव। पाप से क्लेश होता है, धर्म से सुख होता है, इसमें रंच भी संदेह नहीं है। कोई इष्ट वियोग हो जाए, चित्त से वह उतरे ही नहीं, बड़ी वेदना है, अचानक मर गया, उसकी ओर बड़ा आकर्षण था, निरंतर शोक मग्न हो रहे हैं, उस दुख को कौन मिटा सकता है? क्या किसी में यह सामर्थ्य है कि जिसका वियोग हुआ है उसको सामने लाकर धर दे? किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो कौन मिटाएगा उसका शोक? ज्ञान मिटाएगा। जब चित्त में यह बात सामने आ जाए, मैं आत्मा, अमूर्त, ज्ञानानंद मात्र, देह तक से भी न्यारा, केवल अपने स्वरूप रूप हूँ, और जिसका वियोग हुआ है वह अत्यंत जुदा जीव था, अपने कर्मानुसार शरीर में आया था और अपने कर्मानुसार देह छोड़कर चला गया, उससे मेरा रंच भी संबंध नहीं है। यह ज्ञान किरण आए तो क्लेश मिटे। ज्ञान किरण ही, ज्ञान में ऐसा विचार आ जाए तो उसके क्लेश मिट जाए। इसी ज्ञान का नाम तो धर्म है। धर्म आए तो दुख मिटे। मोह करना पाप है और निर्मोह होना धर्म है। क्लेश मोह से है, निर्मोह भाव से नहीं। राग द्वेष पक्ष करना अधर्म है। हम दुखी होते जाएं अधर्म ही के कारण, और उस दुख को मिटाने का उपाय अधर्म करना ही समझे तो कैसे उद्धार हो सकता है? दुखों के मिटाने के लिए यही बात सच है। किसी व्यसनाधीन हो जाता है और कुछ सोचता है, कुदेवों के पीछे चलता है, ये क्या है? और अधर्म कर रहा है। संसारियों के सुख के प्रयत्न की विफलता। संसार के प्रत्येक जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, और वे जितने भी प्रयत्न करते हैं दुख के दूर करने का और सुख के अनुभव का प्रयत्न करते हैं, किंतु प्रयत्न सारे निष्फल चले जा रहे हैं। बहुत प्रयत्न किया पर दुख दूर नहीं हुआ, ऐसा सभी अनुभव कर रहे हैं। बतलाओ, सुख प्राप्ति के भाव से ही गृहस्थी बसाते हैं, घर के परिवार के लोगों को जुड़ाते हैं, धन संचित करते हैं, और अंत में होता क्या है? धन भी बिगड़ता है, परिजन भी बिगड़ते हैं। किया था सुख की आशा से सब कुछ, किंतु सुख मिल न सका। संसार में ऐसे ही गहन नाच हो रहे हैं। यहाँ सुख की आशा करना बिल्कुल भ्रम भरा प्रयत्न है। तो जितने भी क्लेश होते हैं वे पाप से होते हैं, और जब जब भी आनंद मिलता है तब धर्म से। राग भाव करते हुए, धन संपन्न होते हुए, कोई लाभ हो रहा हो, प्रतिष्ठा हो रही हो, इन सबको सुनते हुए इस जीव को भीतर से चैन नहीं मिलती। अनुभव करके देख लो। जब आर्थिक स्थिति कम होती है उस समय कितना समय मिलता है धर्म कार्य के लिए और कितना उपयोग लगता है, और जब आर्थिक स्थिति बढ़ने लगती है तो उस धन को भी तो संभालने में श्रम होता है, उपयोग देना पड़ता है, और फिर तृष्णा बढ़ती जाए तो उसके स्वप्न भी आते रहते हैं, फिर धर्म की ओर बुद्धि नहीं जगती। किस चीज में सुख माना जाए? संसार के समागमों में सुख नहीं है, सुख तो धर्म में है। धर्म पालन में प्रारंभिक पुरुषार्थ। धर्म के पालने के लिए पहले यहां से शुरुआत करें। वस्तु का स्वरूप समझे, यथार्थ तत्व का ज्ञान करे। ये शुरुआत कहां से? देखो, वस्तु का स्वरूप समझना है तो जो पहले आप तक का भी बात बताई थी ना, भगवान यानी अरिहंत देव से हमें सच्चा उपदेश मिल सकता है, तो उनसे जो परंपरा से चला आ रहा है वही कार्यकारी है उपदेश। मैं वास्तव में क्या हूँ, और ये जगत के जो कुछ भी समागम मिले हैं, इन समागमों में यह क्या है, यह बात समझे बिना धर्म का प्रारंभ भी नहीं हो सकता। हम जहाँ हैं, जहाँ फंसे हैं, जिस बंधन में हैं, उसकी समस्या तो समझ न पाए, उसका तो यथार्थ परिचय न पा सके, और बाबा वाक्य की बात रटते रहे तो शांति तो नहीं मिल सकती। बाबा वाक्यम प्रमाणम कहते ना, इन्हें जो सुना है वो रटते रहे तो कैसे होगा धर्म? पहले मैं कौन हूँ, क्या है ये परिस्थिति, क्या है वस्तु का स्वरूप, क्या है, इसका तो विचार नहीं कुछ। हम जहाँ है, जो हमारे सामने है, जो मैं खुद हूँ, इसका निपटारा भी न हो तो शांति कैसे पाओगे? एक बार इंस्पेक्टर ने स्कूल को खबर भेजी कि हम अमुक दिन अमुक समय पर बच्चों की भूगोल विषय की परीक्षा लेने आएंगे। मास्टर जी ने बच्चों को खूब समझाया और भी विशेष करके बताया, देखो यहाँ अमेरिका है, यहाँ रूस है, यहाँ अमुक नदी है, खूब समझा दिया, खूब रटा दिया, समझा दिया। इंस्पेक्टर आए तो लड़कों से पूछा, बोलो बच्चों, तुम्हारे गांव के पास से जो नाला निकला है ना, वह कहाँ से निकला है? अब बच्चों ने तो अमेरिका की, रूस की और सब जगहों की पहाड़ नदियां पढ़ी थी, पर गांव का नाला तो बच्चों ने न पढ़ा था। सब चुप रह गए। अरे भैया, बड़े बड़े देशांतरों के नदी नालों का पता किया जा रहा है पर अपने गांव के नाले का पता नहीं है। ऐसे हम जिन शरीर में बंधे हैं, जिस समागम में रह रहे हैं, उसे न जाने, और बड़े पुराने ऐतिहासिक बातों को, देवी देवता आदि अनेक पौराणिक बातों को खूब बखानते रहे, समझाते रहे, और उनके ही आधार पर हम धर्म करते रहे, ऐसे तो अपना पार न पड़ेगा। स्वपर प्रतिबोध। धर्म प्रसंग में इतना श्रम करने पर भी लोग सुखी नजर नहीं आते। इसका कारण यह है कि सुख का जो यथार्थ उपाय है वह तो न किया। सुख का उपाय इस तरह चलेगा, पहले अपने को और पर को यथार्थ रूप से समझ लो कि मैं क्या हूं और ये सब समागम क्या है। जिसे लोग मनुष्य कहते हैं, यह दो पैर वाला कुछ व्यवहार में आ रहा है, जिससे मोह बसाया है, यह सब एक वस्तु नहीं है, यह तीन का पिंड है। वे तीन है कौन? यानी जो मनुष्य जो कह रहे हैं वो क्या है? एक तो यह आत्मा ही स्वयं है, दूसरी चीज अनंत कर्म परमाणुओं का पिंड रूप कारमान शरीर है, जिन्हें कोई प्रकृति कहते हैं, कोई कर्म कहते हैं, कोई विधि ने भाग्य कहते हैं। तीसरी चीज ये शरीर की वर्गणाएं, शरीर के स्कंद, इन तीन का यह पिंड है। जो हम आपको नजर आते हैं ये सभी जीव, स्थावर हो, तिरंच हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, नारकी हो, इन तीन के पिंड है, इसलिए वास्तविक पदार्थ नहीं है। इनका विघटना हुआ कि माया विघट गई। इस पिंड में जो आत्म तत्व है वह मैं हूं, और वह मैं एक ज्ञान दर्शन आनंदमय हूं, और ये सर्व कर्म सब अचेतन है। इन सबसे न्यारा यह मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूं, इस मेरे का किसी भी अन्य जीव से रंच संबंध नहीं है। ये समझदार में आते हैं, कर्म और नौकर्म से अपने को भिन्न जानेगा, ये क्या कहते हैं, उसमें मैं हूँ, मेरे में वो है, ये सब खिचड़ी कर बैठा है, तो इस तब तक वो अप्रतिबुद्ध है। विवेक प्रकाश। संसार के ये सभी जीव अपने अपने कर्मोदय के अनुसार किसी कुटिया में इकट्ठे होते हैं, सुख दुख पाते हैं, जन्म मरण करते हैं। यहाँ कोई किसी दूसरे का सुख दुख जीवन मरण नहीं करता है। ऐसा ही अत्यंत न्यारा मैं हूँ, ऐसा बोध हो तो धर्म का पालन होगा। यदि ऐसा भेद विज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो धर्म के नाम पर कितने ही उत्सव समारोह विधान कुछ भी कर लेने पर भेद विज्ञान न होने से धर्म नहीं होता। वहां एक प्रकार से शुभ कर्म का लक्ष्य करके अपना दिल बहलावा किया है, पंच कल्याण कहो, विधान कहो, क्या किया, अपना दिल बहलाया, और लक्ष्य किसका है? कुछ पुण्य कमाने का। फिर से पढ़ते क्या? यदि ऐसा भेद विज्ञान नहीं, भेद विज्ञान कोई विवेक कहते हैं, विवेक नहीं है, तो धर्म के नाम पर कितने ही उत्सव समारोह विधान कुछ भी कर लेने पर भेद विज्ञान न होने से धर्म नहीं होता। धर्म के नाम पर किए हो पर धर्म नहीं होगा। वहां एक प्रकार से शुभ कर्म का लक्ष्य करके अपना दिल बहलावा किया है। धर्म नियम से शांति और आनंद को उत्पन्न करता हुआ ही प्रकट होता है। इसलिए यह भय मत करो कि सुख बिगड़ जाएगा धर्म करने से। धर्म से सुख बढ़ता है, बिगड़ता नहीं है। सुख तो धर्म का फल है, यह धर्म अपने फल में कष्ट न देगा। मोह राग द्वेष की अधर्म रूपता, यानी वो इटसेल्फ अधर्म है। ये जीव मोह में तो मस्त हो रहे हैं, राग द्वेष मोह की घटनाओं के लिए तो हम तन मन धन वचन सब कुछ लगा रहे हैं, और एक सही मायने में आत्महित के भाव से धर्म की ओर नहीं लगते हैं। धर्म का उद्यम करो, मोह से कुछ पूरा न पड़ेगा, सब बिछुड़ेगा, अंत में दुखी होना पड़ेगा। जो पुरुष संयोग के समय में हर्ष मानते हैं उनको वियोग के समय में माथा धुनना पड़ेगा, बड़ा दुखी होना पड़ेगा, इससे अभी से ही चेत जाओ। जिन चीजों का संयोग हुआ है उन चीजों को विनश्वर मानो। यह संयोग किसी दिन अवश्य मिटेगा, वो रहेगा उधर ही, हम ही चले जाएंगे। क्यों? एक गुरुदेव कहते ना उसको इस सेठिया के घर में कैसा लगा, कैसा लगा उसको, तो अपना घर देख देख कर वो अपनी महिमा आते थे। इसमें से निकलने में बहुत कठिन हो, भारी भारी पड़ेगा। भले वो घर में ही मर जाए पर लोग तो उसको रखेंगे नहीं उधर, चलो हटाओ उसको। वो तो चला गया, शरीर भी वहां पड़ा रहेगा तो उसको भी हटा देंगे। ऐसा अपना निर्णय बनाए रहो तो वियोग के समय में फिर क्लेश न होगा। इस कथन में सार बात इतनी है कि मोह राग द्वेष करना तो अधर्म है, और इन भावों पर विजय प्राप्त करके केवल ज्ञाता दुष्टा रहना, जान लेना, बस इतनी ही मात्र अपनी वृत्ति रखना, यह है धर्म। धर्म पालन से अमूल्य अवसर का लाभ उठाने का संदेश। धर्म से नियम से सुख होता है और अधर्म के कारण नियम से दुख होता है। ऐसा निश्चय करके धर्म का आदर करना चाहिए। धर्म के लिए उत्साह बनाओ, समय निकालो। धर्म ने केवल धर्म के नाम पर की क्रिया की बात नहीं हो रही है, धर्म ने वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव प्रकट करना उसकी बात है। तत्व ज्ञान की बात सीखने को अपना भाव बनाओ। प्रमाद में समय गुजर जाएगा तो पछताएगा, यह बड़ा मूल्यवान निर्भव है। यो ही खो देने से फिर इस जीव को दुखी होना पड़ेगा। इस उत्कृष्ट अवसर का लाभ निष्पक्षता, उदारता, सरल रहना, नम्र रहना, तृष्णा का न होना, मैं अकिंचन हूँ, मेरा जगत में कहीं कुछ नहीं है, ऐसा समझकर बाह्य वस्तुओं से विरक्त होना और अपने स्वरूप की ओर झुकना, यही धर्म है। जो धर्म करेगा वह नियम से सुखी होगा। 21 नंबर। धर्मादवाप्त विभव धर्म प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु बीजादवाप्त धान्य कृषिवलस्तस्य बीजमिव। धर्म प्रतिपालन सहित ही भोग भोगने का संदेश। हे पुण्यवान पुरुष, धर्म से यह समस्त वैभव प्राप्त किया है, अब इस वैभव के भोग का अनुभव तो कर, किंतु धर्म का प्रतिपालन करते हुए भोगों को भोग। देख, किसान भी जिस बीज से धान्य प्राप्त करता है उस धान्य का भोग भोगता तो है, किंतु बीज को पहले से सुरक्षित रख लेता है, समस्त धान्यों को नहीं भोगता। क्या कहना, फिर दोबारा वो तो बोने के लिए बीज रखेगा कि सब कुछ खा डालेगा? वह बीज की रक्षा करता है जिससे कि आगे भी धान्य पैदा किया जा सके। आत्महितार्थी को चाहिए वह धर्म की रक्षा करके ही भोगना पड़े तो सुख भोगे। इन्हें यहाँ भोगने की मुख्यता नहीं है, धर्म की रक्षा की मुख्यता। जैसे बीज की रक्षा करके किसान धान्य का भोग करता है। आनंद का साधन। जीव को जो कुछ भी आनंद है वह ज्ञान और वैराग्य का आनंद है। किसी परवस्तु से तो आनंद आता ही नहीं है, किंतु परवस्तुओं के प्रेम से भी आनंद नहीं मिलता। जितना चित्त में वैराग्य दृढ़ बने, जितना परवस्तुओं से उपेक्षा बनती जाए, उतना ही यह जीव आनंद का पात्र होता है। कोई भी पुरुष किसी भी परिस्थिति में हो, उसी परिस्थिति में वह विवेक बनाए रहे कि मुझे जितना स्वास्थ्य साधना के लिए आवश्यक है और आत्मकल्याण के लिए आवश्यक है, उतना तो मन वचन काय की चेष्टाएं करें, व्यर्थ अपने मन का पसारा न बनाएं। इन वचन व्यवहारों को भी अटपट जहां चाहे न बोला करें, किंतु जिसमें कोई आजीविका का काम विदित हो अथवा आत्मकल्याण का काम विदित हो वहां ही अपना वार्तालाप करें, और शरीर से भी चेष्टा अपने किसी शुभ प्रयोजन के लिए ही करें। वंदन, पूजन, सत्संग, गुरु सेवा आदि शुभ कार्य कामों में काय चेष्टा करें, यानी शरीर की जो क्रियाएं, शरीर का श्रम किन्हीं अशुभ बातों के लिए न करें, यह सब जीवों का कर्तव्य है। ये मन की, वचन की, काय की, सब की बात, चाहे कोई गृहस्थ परिस्थिति में हो अथवा साधु परिस्थिति में हो, यानी वो उसकी भूमिका, परिस्थिति यानी गृहस्थ की भूमिका में हो या साधु की, दृष्टि, लक्ष्य, झुकाव में सब समस्त ज्ञानी जनों के एक रूप होते हैं। यानी भले वो गृहस्थ हो या साधु हो, बाह्य क्रिया से मत जाना, उनका लक्ष्य, उनकी दृष्टि, उनका झुकाव, जो ज्ञानी है उनके सब एक जैसे होंगे। परिस्थितिवश, परिस्थितियां ने अभी ये भूमिका बताई, कुछ विभिन्न भी प्रयत्न कर सकते हैं, यह है उनकी जुदी जुदी बात। वैराग्य रूप धर्म साधन से हित लाभ। भैया, जितना वैराग्य का चित्त में ध्यान होगा, अर्थात परवस्तुओं की अधीनता जितनी कम होगी, उतना ही इस मनुष्य का हित है। वैराग्य से प्रयोजन सीधा इतना ही है, सब कुछ छोड़कर निर्ग्रंथ दिगंबर बने, यह तो उत्कृष्ट बात है, पर सबके लिए बात कही नहीं जा रही है। किंतु अपनी अपनी परिस्थिति में सबको यह निर्णय रखना चाहिए कि आजीविका और आत्मोद्धार, इन दोनों से जहां संबंध हो वहां ही मन, वचन, काय का व्यापार हो, यह उन्नति का मार्ग है। यानी गृहस्थ है तो आजीविका इज मस्त उसके लिए, तो उसके लिए हो तो हो, परंतु उसे छोड़कर बस, हाँ, केवल धन के ही बढ़ाने की बात नहीं है। यूं तो सभी संसारी जीव अपनी अपनी कषाय वासना के अनुसार नाना प्रयत्नों में जुटे रहा करते हैं, परंतु लाभ क्या मिला इन जीवों को? तो मिला ही नहीं कुछ। इसका प्रमाण यह है कि अब भी तो संसार में रुलते फिरते धरे हुए हैं। यह पुण्य सामग्री, श्रावक कुल, धर्म का समागम और भी यथावसर सत्संग का मिलना, ये सभी बातें उत्कृष्ट प्राप्त हुई है, इन्हें पाकर व्यर्थ नहीं गवाना है। गृहस्थ है तो यह काम करे कि वैभव आदि का भोग भोग कर धर्म की भी दृष्टि बनाए रहे। जिस धर्म के प्रसाद से यह पुण्य वैभव मिला है, उस धर्म को न काट दे, उसकी रक्षा बनाए रहे। ध्रुव में अनास्था। वज्रदंत चक्रवर्ती के वैराग्य भावना में सर्वप्रथम ही आप लोग बोलते हैं, बीज राक फल भोग वे जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाही। ये चक्रवर्ती भी चक्रवर्तित्व का बड़ा सुख भोगते हैं। 32 मुकुटबद्ध राजा जिनकी सेवा में रहते हैं, ऐसे सबसे उत्कृष्ट राजा चक्रवर्ती भी भोगों को इस प्रकार भोगते हैं कि धर्म को विसारते नहीं है। जैसे किसान अन्न का भोग करता है पर बीज को पहले रख लेता है। भोग प्रसंगों में मस्त मत हो, यह उपदेश का सारांश है। इस जगत में कुछ भी चीज अपना सर्वस्व समर्पण करने योग्य नहीं है। समस्त समागम ऐसे अध्रुव है जैसे चलते हुए मुसाफिर को रास्ते में जो पेड़ मिलते हैं, उन पेड़ों का कितने क्षण संयोग है। छोड़े जा रहे हैं, जिन भी पेड़ों का मिलाप होता है उनको छोड़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अपनी यात्रा बनाए चले जा रहे हैं। इस संसार की मुसाफिरी में ये मकान, वैभव, परिजन, लोग उन पेड़ों की भांति क्षणिक समय के लिए मिले हैं, इनमें मत्त और मग्न होना विवेक नहीं है। दृष्टांत पूर्वक सुख बीज रक्षण का समर्थन। चतुर किसान तो विचार करता है कि जो अन्न खेत से उत्पन्न होता है यह बीज से उत्पन्न होता है। कुछ भी इस उत्पन्न अनाज में से बीज रख लेंगे तो आगे भी अन्न की प्राप्ति होगी। यो विचार कर वह चतुर किसान बीज को रखकर अन्न को भोगता है। थोड़ा कभी कम खाकर भी गुजारा करना पड़े तो भी उसे इष्ट है, मगर बीज रखना नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। ऐसे ये जितने भी सुख है ये सुख सब धर्म के प्रसाद से मिले हैं। धर्म न होता तो इंद्रिय विषयों का अच्छा साधन न मिलता, सुख की प्राप्ति न होती। हे कल्याणार्थी भव्य पुरुष, तू सयाना बन, ये समागम तो विनश्वर है, तू इनमें प्रीति मोह करके मूढ़ मत बन। जो कुछ भी मिला है वैभव तुझे धर्म के प्रसाद से पुण्य के अनुकूल मिला है, उस वैभव को नहीं निहारना है। सुखम मूल यानी सुख का मूल धर्म की रक्षा कर, वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल और उदयवश जो कुछ भोगना है सो भोग लो, किंतु धर्म को न बिसारो। अब भी धर्म रखेंगे साधेंगे तो आगामी काल में भी सुख की प्राप्ति होगी, इस कारण धर्म की रक्षा करते हुए सुख भोगना चाहिए। आनंद सुख व दुख के मूल त्रिक। जैसे आनंद के संबंध में तीन बातें होती हैं, आनंद सुख और दुख, इन तीनों में फर्क है। आनंद नाम तो शुद्ध आत्मीय आनंद का है, सुख नाम है सांसारिक सुख का, इंद्रिय जन्य सुख का। ख मायने इंद्रिय, सु मायने सुहावना लगे, और दुख मायने पीड़ा वेदना, जहां इंद्रिय को सब कुछ असुहावना लगे। ये तीन भाव है आनंद सुख और दुख। ऐसे प्रसंग में तीन भाव समझना धर्म, पुण्य और पाप। धर्म नाम तो है राग द्वेष न करके मात्र जाननहार रहना, इस धर्म से आनंद की प्राप्ति होती है। धर्म किसी जाति का किसी कुल का बंधन रूप नहीं है। जो भी भव्य जो भी पुरुष सविवेक राग द्वेष को तजेगा, जगजाल का ज्ञाता दृष्टा रहेगा, इसमें न झुकेगा, इसके आशा न करेगा, अपने आप के स्वभाव के उन्मुख ही रहेगा, वह धर्म पाल रहा है, वह इस धर्म के फल में आनंद प्राप्त करेगा। धर्म के सद्भाव में अविशिष्ट अनुराग का फल वैभव। इस धर्म के करने की दृष्टि और यत्न रखते हुए भी जो कुछ राग शेष रहा है, शुभ राग बना है, उस राग के फल में उत्कृष्ट पुण्य बंध होता है। धर्म से बंध नहीं होता, ख्याल में ना, धर्म के साथ साथ अभी राग बाकी है भूमिका अनुसार, तो उससे पुण्य बंध हो रहा है, क्योंकि धर्म की दृष्टि साथ है, उसका सहचर ये पुण्य है। अब धर्म की दृष्टि और धर्म का आश्रय जितना साथ है और जितना राग है उसके अनुसार पुण्य बंध होता है, उस पुण्य के उदय में इष्ट चीज की प्राप्ति होती है। उस समय यह जीव उन इष्ट पदार्थों का भोग अन्यायपूर्वक, आसक्ति पूर्वक और अपने आप की सुधबुद्ध खोकर भोगता है तो उसकी दुर्गति अवश्यम भावी है। धर्म को न विचार कर मेरा कर्तव्य तो शुद्ध ज्ञाता दृष्टा रहने का है, ऐसा ध्यान रखते हुए उदयाधीन जो कुछ सुख का भोगना बनता है वह दुर्गति का कारण नहीं होता, क्योंकि इसमें दृष्टि धर्म की रक्षा की भी साथ में पड़ी हुई है। मोही जगत पाप फल से भीत और पाप का अनुरागी। क्या कहते हैं, पाप के फल तो नहीं चाहता है पर पाप तो करता रहता है, यही बात है ना। क्या रहा, कहा मोही जगत पाप फल से भीत है ना, भयभीत होता है, तो पाप का तो अनुरागी है, पाप तो करता रहता है। पाप भाव है विषय कषायों में निरर्गल लग जाना, कोई अर्गला न रखकर, कोई आन विनय दृष्टि भावना न रखकर जो विषय कषायों में मन चाही प्रवृत्ति की जाती है वह सब पाप भाव है। स्वच्छंद वृत्ति जो है, पाप के उदय में क्लेश के साधन निकट होते हैं और उसमें यह जीव परेशान हो जाता है। लोग पाप का फल तो नहीं चाहते हैं किंतु पाप करते रहते हैं, तो जो किया है उसका फल तो भोगना है कि नहीं। पाप का फल है दरिद्रता, दुख होना, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, ये सब पाप के फल है। इन्हें तो नहीं चाहता यह जीव किंतु पाप को छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करता। ये सारे ये दुख वगैरह जो पाप के फल है वो तो नहीं चाहता परंतु पाप छोड़ना भी नहीं चाहता। पुण्य के फल को तो चाहता है यह जीव, पुण्य का फल है इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग, विषयों के अनेकानेक साधन मिलना, इन सबको तो चाहता है यह किंतु पुण्य को नहीं करना चाहता। यही रुकेंगे अभी ना, तो आगे का बड़ा पैराग्राफ पाप फल और पुण्य फल वगैरह की बात करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवानी मस्तकनम सदा देत हो।